नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर रवि कुमार द्वारा लिखी पुस्तक किसका सच कितना सच की कहानियों की श्रृंखला में हमारी आज की कहानी है मकाम। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मकाम। अपने घर के बरामदे में कुर्सी डालकर धीमे धीमे आसमान से उतरती बूंदों की बनती एक झालर के बाहर मास्टर ब्रह्मानंद अपने उस घर के लॉन में लगे उन दरख्तों को देख रहे थे जिनको कभी उन्होंने तब लगाया था जब वो नन्हे नन्हे पौधे थे। वो उन पौधों को बड़े प्यार से बड़े नाजों से तब तक पालते रहे जब तक वो पौधे अपनी जड़ों पर खुद खड़े होने के काबिल ना बन गए। उन पौधों की जड़ें जितनी गहरी उतरती गई उतनी जमती गई और वह उतने ही जमीन से ऊपर उठते गए। कुछ ऐसा ही मास्टर ब्रह्मानंद के साथ भी हुआ। उनके भी पैर जहां जमते गए और वो औरों के जहन में गहरे उतरते गए और नजरों में उठते गए। लेकिन जड़ों में और पैरों में एक फर्क होता है। जड़ें अगर जम जाएं पेड़ अपनी जगह से हिल नहीं पाता, मगर पैर अगर जम भी जाए तो इंसान चाह कर भी टिक नहीं पाता। उनके ना चाहते हुए भी मास्टर ब्रह्मानंद की ज़िंदगी में वो मकाम आ चुका जब उनको अब यहाँ से जाना था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 35 साल ही नहीं बल्कि पूरे 35 साल यहाँ रहकर बिताए, यानी कि उनकी अब की उम्र से ये 35 साल घटा दे तो जितनी उम्र बचती है वो तो उस उम्र में यहाँ आए थे। जब पहली बार वो इस कस्बे में बस अड्डे पर बस में उतरे थे तो ये कस्बा कस्बा ही भी नहीं था, पर जब से इस कस्बे को शहर की हवा लगी तब से ना कस्बा रहा ना शहर बन पाया, और शहर और कस्बे में फ़र्क जानने वाले ये तय नहीं कर पाए कि ये शहर है या कस्बा है। और इस फर्क को तो ना जानने वाले अपनी अपनी समझ से कभी इसे शहर समझ बैठते हैं कभी कस्बा। पर यह तो तय है कि जिस रोज़ ब्रह्मानंद यहाँ आए ये शहर तो हरगिज नहीं था। हाँ, कुछ उम्मीद ज़्यादा लोग इसे कस्बा ही कह लेते थे। तब था क्या यहाँ? बाजार के नाम पर बस अड्डे के सामने एक ढाबा, दो एक परचून की दुकानें, एक दो फल सब्जी के ठेले, एक साइकिल ठीक करने वाला मिस्त्री और एक हजामती, वो भी एक बड़े से पेड़ के नीचे कुर्सी लगाकर इक्का दुक्का लोगों की हजामत किया करता था बस। पर ब्रह्मानंद इतनी दूर से यहाँ ना तो साइकिल ठीक करवाने आए थे और ना ही हजामत करवाने। उनकी तो मंजिल थी विद्या आश्रम, उन्हें यहाँ अंग्रेजी भाषा पढ़ाने की नौकरी मिली थी। विद्या आश्रम हर लिहाज से बड़ा स्कूल था, नाम और रुतबे में भी और अपने फैलाव में भी। सब पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले यही स्कूल के अंदर ही रहते थे। अपने आप में विद्या आश्रम एक बड़े कुनबे से कम नहीं था, और इस कुनबे का हिस्सा बनते ही ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद से मास्टर ब्रह्मानंद बन गए। वो यहाँ के माहौल में यहाँ की आबोहवा में ऐसे रमे कि बाकी बाहर के दिन दुनिया से छूट ही गए। अपने शागिर्दों से तो वो खासे चहेते बन गए। एक तो अच्छा खासा डिल डुल रोबदार दमदार आवाज, 6 फुट से जरा सा ज्यादा ही ऊंचा कद और ऊपर से अंग्रेजी भाषा के कमाल के उस्ताद। अपने कद बूत आवाज के लिहाज से एक तरफ तो वो शागिर्दों के मन में खौफ पैदा करते और दूसरी तरफ अपने उस्तादी और मिलनसार बर्ताव से उनके दिल में इज्जत और प्यार। क्योंकि मास्टर ब्रह्मानंद यहाँ अकेले रहते थे इसलिए हर शाम उनके साथ काम करने वाले दूसरे उस्ताद उनके घर में डेरा डाल लेते और देर रात तक खाने पीने हंसी ठिठोली की महफिलें खूब सजती। बस यूं ही एक के बाद एक ना जाने कितने साल गुजरते रहे। मास्टर ब्रह्मानंद को इस तरह से जीने की ऐसी लत पड़ी कि उन्होंने शादी तक नहीं की। शुरू शुरू में जब वो यहाँ आए तो लोगों के हिसाब से वे कुंवारे माने जाते थे, फिर धीरे धीरे उनको छड़ा मलंग माना जाने लगा। तब उम्र और बढ़ी तो वह अविवाहित ही कहलाए जाने लगे, और फिर बढ़ती उम्र का असर जिस्म पर भी झलकने लगा। वैसे तो वो पहले से ही अच्छे खासे लंबे थे, पर शायद उनका सर कुछ और ऊपर उठना चाहता था इसलिए वो उनके घने काले बालों को एक तरफ झाड़ता हुआ बाहर निकल आया। इसके बाद तो मास्टर ब्रह्मानंद के छिले हुए सिर को तो कोई टोपी ही ढक कर सकी। पेट और छाती के बीच लगी पुरानी होड़ में पेट आगे निकल गया और आखिरकार वो पीछे अकेले ही रह गए। और इस वक्त जब रात और नींद के बहकावे में आकर आसपास के सभी घरों में रहने वाले अपने परिवारों के साथ दुबके पड़े थे, मास्टर ब्रह्मानंद अकेले ही अपने घर के बरामदे के छोटे से बल्ब की मद रोशनी में बैठे शायद इस पल पल बीतती रात को जगती आंखों से रोकने की कोशिश कर रहे थे। उनका मन अंदर कमरों में घुसने से घबरा रहा था। अकेले रह रहकर मास्टर ब्रह्मानंद को चीज़ों से, सामानों से और चीज़ों को सामानों को मास्टर ब्रह्मानंद से लगाव सा हो गया था और जिन कमरों में उन्होंने बड़ी शिद्दत से इन चीज़ों और सामानों से सहेजा सवारा सजाया था उन्हीं कमरों का सारा सामान बड़े बड़े गत्ते के डिब्बों में, संदूकों में, कपड़े की गठरियों में ऐसे लिपटा पड़ा था जैसे कोई मुर्दा ताबूत या कफन में पड़ा हो। पर जब मुर्दा घर के अंदर हो तो घर के लोग बाहर ही तो बैठे जनाजा उठाने की तैयारी करते हैं। इस घर का सामान तो डब्बों में, संदूकों में, गठरियों में जैसे तैसे समा गया, पर उन पलों, उन लम्हों का क्या जो उन्होंने इस घर में रहकर बिताए थे, और उस पेड़ का साया जो उनकी देखरेख की वजह से शायद छायादार बना था, उस साये का क्या, और बाहर की दीवार को चिपक चिपक के लिपटे लिपट के वो रात की रानी की बेल जो उनके देखते देखते छत तक जा पहुंची थी, उसके फूलों से उठने वाली महक जिसे वो अभी भी अपनी हर आती सांस के साथ अपने अंदर तक जज्ब कर रहे थे, उसका क्या, वो सब किस डिब्बे, किस संदूक, किस गठरी में समाते। 35 साल ये मास्टर ब्रह्मानंद का घर था और कल सुबह मास्टर ब्रह्मानंद के ये घर खाली करते ही फिर से घर तब तक एक मकान हो के रह जाएगा जब तक कोई उसे फिर से घर नहीं बना देता। हाँ, तब ये घर तो जरूर बनेगा, पर किसी और का। मास्टर ब्रह्मानंद पिछले कई रोज से इस दिन के अंदर अंदर टल जाने की सी दुआ करते रहे। उनकी अपनी हद में वो कर सकते थे, उन्होंने वो किया। पहले तो उन लोगों से जो संस्था के मालिक थे या उसे चलाने वाले थे कुछ वक्त और काम करते रहने की गुजारिश की, पर उन सब ने उनको उनकी उम्र और संस्था के असूलों का हवाला दे डाला जिसके मुताबिक कोई भी मुलाजिम 60 के बाद यहाँ काम नहीं कर सकता, और लिहाजा नौकरी के साथ मिला हुआ ये मकान भी उन्हें छोड़ना पड़ता। ऐसा नहीं है कि वो ये जानते नहीं थे, पर जानने में और मैं समझने में जो फ़र्क होता है वो खुद ये समझ नहीं पा रहे थे। जितनी रात निकलती जा रही थी नींद उतनी उनकी आंखों से फिसलती जा रही थी। बरामदे से उठकर पानी पीने वो रसोई की ओर चले। रास्ते में सबसे पहले इस मकान वो सबसे बड़े वाला कमरा पड़ता था। आगे बढ़ने से पहले वो कुछ पल वहीं ठिठक गए। इस कमरे की दीवारों पर उन्होंने बड़े बड़े जहीनता से सजाया था। उनकी अपनी पसंद के रंगों से रंगवाई गई दीवारें बिल्कुल बेरंगी लग रही थी। एक बड़ी सी पेंटिंग जो एक दीवार के बीचों बीच लगाई गई थी अब एक गत्ते के डिब्बे में बंद पड़ी थी, और दीवार पर वो कीले रह गई थी जिनके सिर पर वो टंगी हुई थी। कमरे का वो कोना जो एक बड़े गुलदान के दम से आबाद था अब बिल्कुल सूना पड़ा था, पर इस साल का कैलेंडर अभी भी वहाँ मौजूद था। वो उसके नज़दीक जाकर खड़े रहे और देर तक उसे घूरते रहे इस उम्मीद से कि शायद इस पर छपे साल, महीने, तारीखें गलत छपे हों, और हाँ, और उनके जाने में शायद अभी भी वक्त बचा हो। फिर एकदम से वो वापस बरामदे में आए जहाँ उन्होंने रद्दी पुरानी अखबारों, कागजों और किताबों का ढेर रखा हुआ था। उसी ढेर में से वो 1-2 साल पुराना कैलेंडर निकाल लाए और उसे उस मौजूदा कैलेंडर की जगह लगा दिया। फिर काफ़ी देर तक उसे देख देख कर ये सोच कर जी बहलाते रहे कि अभी तो 2 साल और पड़े हैं। और फिर इसी झोंक में उन्होंने उन बंद पड़े डब्बों में से एक को खोल कर दीवार घड़ी निकाली और 6-7 घंटे पीछे फिरा के उसे दीवार पर टांग के ये सोचने लगे कि चलो अभी तो रात बीतने में काफ़ी वक्त पड़ा है। इंसान वक्त की पूंछ भले ही पकड़ ले पर उस पर सवार कतई नहीं हो सकता। वो पुराने कैलेंडर को टांग और दीवार घड़ी के पीछे करते वक्त की पूंछ पकड़ के उसे काबू करने की एक नहायत ही नाकामयाब और एक बेवकूफ़ बेवकूफाना मगर मासूम सी कोशिश करते, मगर कुचाले भर के भागता वक्त उन्हें दूर तक देर तक घसीटता रहा। और अब उन्होंने इस पर सवार होने की कोशिश की, उसने उन्हें उठाकर पटक डाला। उसी पटकन से लगी चोटों को मास्टर ब्रह्मानंद अकेले खड़े खुद ही सहलाते रहे, और जब उनसे दर्द बर्दाश्त ना हुआ तो उन्होंने उस कैलेंडर को दीवार घड़ी को उतार दिया और उस कमरे से आगे ना बढ़ के वापस वहीं बरामदे में आ बैठे। बादल बूंदों की झालर समेट के अब किसी और दिशा में चल दिए। उनके जाते ही गहरे नीले आसमान के कोनों का रंग धीरे धीरे हल्का होने लगा। कुछ ही देर में उफ की काली बखिया सूरज की पेनी किरणों से उधड़ने लगी और हल्के सतरिया रंग के इशारे के इंतजार में घोंसलों में पेड़ों में दुबके पड़े परिंदों सुबह होने का ऐलान करते हुए आकाश की बुलंदियां और अपने हौसलों को फिर परखने उड़ चले। रोज इसी वक्त मास्टर ब्रह्मानंद भी जग जाते थे और मुंह हाथ धोकर सैर वाले जूते पहनकर एक हाथ में एक छोटी सी पोटली उठाकर सैर को निकल जाते और रास्ते में जहाँ तहाँ बारीक बारीक सुराखों में जिनमें चीठियाँ रहती थी पोटली से आटा निकाल उनके घरों तक उनका सुबह का नाश्ता पहुँचाते। पर आज उन्हें इस सुबह जगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उनका बस नहीं चला, वरना वो ये सुबह आने ही ना देते। वो उसी तरह वहीं बैठे रहे। दिन निकलने में जो थोड़ी बहुत कसर बची थी वो अब पूरी हो चुकी थी। आसपास के घरों के कमरों से अलार्म घड़ी की घंटियों, रसोई घरों से कुकर की सीटियां बजने की, गुसलखानों के नल से पानी की बाल्टियों में गिरने की आवाज़ें, साबुन की खुशबू के साथ कई तरह के हलचलों की आहटें आने लगी। एक हलचल मास्टर ब्रह्मानंद के अंदर भी हो रही थी जिसकी कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन उसका एहसास उन्हें अब यहाँ बैठने भी नहीं दे रहा था। वो उठ के अंदर चले गए और एक तख्त पोज पर जिसे उन्होंने अभी तक समेटा नहीं था लेट गए। तकिए पर सर टिकते ही सारी रात एक पैर पर खड़ी पलकों को कुछ आराम मिला। कुछ ही देर में मास्टर ब्रह्मानंद स्कूल में चल रही सुबह की असेंबली में आंखें बंद कर हाथ जोड़ कर खड़े थे और बच्चों से भी ज़्यादा जोर जोर से प्रार्थना गा रहे थे। उनकी आवाज़ से और बच्चों का ध्यान भटकने लगा, पर उनकी आवाज़ और तेज और तेज और तेज होती गई। उनके साथी उन्हें चुप कराने की कोशिश करते हुए उन्हें मास्टर जी रुक जाओ कहने लगे, पर उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। फिर पता नहीं कहां से स्कूल का चपरासी दौड़ा दौड़ा आया और उनके कंधे झिझोड़ने लगा। उसके ऐसा करते ही उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि वो चपरासी वहां नहीं था और वो स्कूल भी नहीं, उसी तक पोज पर ही लेटे हुए थे। उनके माथे के पसीने और मुंह से गिरती लार से तकिया भींगा हुआ था। करवट लेकर वो उठे और वहीं कुछ देर बैठे रहे। इस कमरे में भी वही नज़ारा था जो दूसरे कमरों में था, वही डिब्बे वही गठरियाँ। उन्हें पता नहीं था कि क्या वक्त हुआ है क्योंकि इस घर की सारी घड़ियाँ उन्होंने डिब्बों में बंद कर दी थी, पर उन्हें यह पता था कि कुछ ही देर में एक छोटा ट्रक उनके घर के बाहर आ खड़ा होगा और उसमें उतर कुछ मजदूर ये सारा सामान एक एक करके उसमें लाद देंगे और ये घर खाली मकान बन के रह जाएगा, जिसके दरवाजों पर इस संस्था का कोई मुलाजिम ताले जड़ कर चाबियाँ अपने साथ ले जाएगा। फिर वो खुद उसी ट्रक में आगे ड्राइवर के साथ बैठकर विद्या आश्रम के उसी बड़े से गेट से जिसमें वो आज से 35 साल पहले पहली बार दाखिल हुए थे सदा के लिए बाहर निकल जाएंगे। बस यही सोचते सोचते वो उस भींगे हुए तकिए को उलट कर उस पर सिर टिका कर लेट गए और आंखें मूंद उस ट्रक के आने का इंतजार करते रहे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।